October 28, 2005, evening, Mount
Vrindavan. नमो महाबन्नाय कृष्णे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय मंदीतुंडीवरम जागुरोवासी सत्तामोदर राधास्तंभ निवेशितलभुज न्याय आज सवेरे एकादशी के दिन आप लोगों ने पंचक्रोश की वृंदावन की परिक्रमा की। टुडे इज इन मॉर्निंग आफ्टर आवर क्लास यू डिड पंचक्रोश की वृंदावन परिक्रमा एंड सो मेनी प्लेसेस यू एस्पेशली I told you that when you go to Pani Ghat nearby, oh, the pura Vrindavan, Adi Badri, you go to Adi Badri, there you will see where Srila Vyasadeva meditated Srimad Bhagavatam Bhav. And then he taught it to so many places that I told in what. Now I will begin Mahatmya Kajan Sindhu. But fortunately, one disciple of Hari Learned, a scholar, he said, परमा सेठी महाराज जी दिया भक्ति आलो भक्ति आलो परमा सेठी महाराज ने दिया वेरी इन्फ्लुएंट स्पीकर आई रिक्वेस्ट मी टू स्पीक समथिंग हाउ वी कैन इंक्रीज आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस
सत्कमा फल नमस्ते When my spiritual master, Srila Prabhupada, arrived in the USA, Prabhupada, he wrote a poem, and he said in that poem that he had been named Bhaktivedanta, but then he didn't see that there was any devotion or any knowledge in him. I feel very ashamed in front of all of you. And absolutely no scholarly nature or any expertise. But being requested, I should have arrived much to speak. I simply beg you to pardon me for my incapacity to say anything better or more appropriate or more inclusive. The subject matter, how to advance in Krishna consciousness, it's a very important topic for me and for all of us, because you know the years pass by fast, like a lightning bolt just flying by, and still within the periods so many tests and trials come across our path, so many enigmas to be resolved, so many questions to be answered. And sometimes we simply don't know where to look. I've learned from the very beginning of the days when I came across the Gaudiya Vaishnavas that attachment to the lotus feet of the spiritual master fulfills all desires. And being attached to the words emanating from his lotus mouth is the best guiding star in one's life. This was so nice to see how Lord Krishna, somehow or other, again and again makes his appearance in the form of his devotees who are affectionately caring for us, pull us forward on this path and show us the importance of chanting the holy name and to remove the weeds which grow along with the seed of bhakti, the bhakti lata bija, and how by trying to do so in the appropriate association we can further develop into the world of spiritual unending development, which might Sanyas Guru Srila Bhaktivinoda Srila Maharaj called the positive and progressive immortality. That in itself is inconceivable for my little brain, but it must be positive and it must be progressive, because each and every one of our souls is longing for nothing but that. Stale, pale, monotone, rhetoric, manipulative, bureaucratic, such things cannot enchant our soul. They simply drag us down to question even the basic elements which are the foundation of our spiritual life of attempted dedication. But the positive and progressive immortality reveals itself in an ever-enchanting variety of sweet revelations of the same absolute truth. Once a description was given of the very prominent teachers in our Gaudiya Math family. They were Jajwa Maharaj, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Rakham Srila Deva Goswami Maharaj. In that particular instance, I don't recall who said that, I just heard it. It was comparison given that Srila Jajwa Maharaj, his preaching and explaining of Harikatha was like a clear, beautiful pond where you can see all the way to the ground, all the stones and little fishes inside. Then it was compared that Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj's delivery was like a roaring river coming down from the mountains with a clear, pure essence just over, flooding everybody with nectar. And then the delivery of Srila Bhakti Rakham Srila Maharaj was compared to the clear nectarian well which produces fresh water from the unknown quarter, which is not being heard of necessarily in that same way before, but it is of that quality that one can recognize its pristine purity at once. This example comes to my mind when I think about how many varieties of spiritual deliveries and priorities appear before our eyes as Gaudiya Vaishnavism sweeps over this planet in one and another way, all bringing people to Vrindavan, all bringing them, many of them at least, to Kartik. At least in their heart there is this longing to be here, rolling Raj Raj, and hear from the lips of the pure devotee. That is the sum and substance of feeling enthused in spiritual life. That we know where to turn. That we know that through our sincere inquiry, further installments will be delivered to us, which will enhance our capacity to increase our dedication, to become sold-out servants of the truth and of our Divine Master. Only thinking of the sacrifice which they have all done for us should be enough to convey to us the necessity not to waste any time and not to spare any effort to bring to others the secret treasure delivered to us by our Gurudev. Everybody should be happily accommodated in this family of Krishna consciousness. And everybody has the right and duty to his fullest heart's content to deliver to others what he has received from his Guru Deva in such a cautious, careful and loving way. So, loaded with so many jewels from hearing from the right source, we are gaining a responsibility with all those who are to cross our path onwards. And in their company, we once again may rejoice the memory of that great loving master as he was instructing you and guiding you, and who has come to you now in the form of the anxious listener, checking on you and further extracting from you some of those valuable treasures which were invested into your existence. You took causeless mercy undoubtedly, because if there's anything I can appreciate today, then I can only following in the footsteps of Socrates say the only thing I really know is that I don't know anything. And if I still feel that I have anything to say, then I owe that to the causeless grace of the one who has put his grace on me and accepted me in the fold of those who we call ourselves his disciples. Living up to the standard of being a real disciple undoubtedly is a very, very great task. And sometimes we become a bit morose, seeing our lack of capacity to actually follow his call to that degree and to that extent he impressed upon us would please him. And in separation from the beloved spiritual master, that is obviously becoming increased difficult. But thanks to the divine destiny, again, spiritual guidance comes to us when we are anxious for it and pulls us once again onwards. Once Srila Bhaktivinoda Maharaj said, you don't know who are all your spiritual masters until you actually reach the goal of pure love. So we are always looking forward to be blessed by the associated Vaishnavas, by all their kindness and their wonderful disposition to include you somehow or other in their fold, in their blessings, in their prayers. And when you feel that comfort, that surge, or that what pulls you forward, then you can only remember once again how the divine name and the divine message has come into your life. Guru Tattva is a unique and very difficult to understand topic. Many, many books have been written about it, and still it seems to be quite beyond the intellectual assessment of anyone. Guru Tattva, Jiva Tattva, Shiva Tattva, these are very high topics of the Lord's intervention into this world. And even though they are so far from being grasped, still they are coming so close to us in the form of Gopeshwar Mahadev, in the form of the pure devotee, in the form of our Guru Parampara as it has manifested all around the world and is gracing so many souls. I offer my most humble obeisance to the assembled Vaishnavas, to the sannyasis, to Srila Narayan Maharaj, and beg for your mercy so that I may be able to go on, pull on, like they say, to pull on in this past and not become an embarrassment to my spiritual master. Thank you very much.
श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप से व्यक्त किया। पिटू सोमली बोलते हैं कि रिमेंबर मी जन्म ऑफ पंत के बाद में चली जाकर गौतम विष्णु पास पति जाजावर महाराज क्या जाजावर महाराज भक्ति चारण गुरु स्वामी महाराज पूज्य पाद सिद्धार्थ गुरुस्वामी महाराज आई मेट देम आई एम फॉर्चुनेट टू मीट दिस ऑल इन हाई क्लास बट ऑल्सो आई एम मेट टू होम ही हैज नॉट मीट परम पूज्य पाद नैनी महाराज और बस नैनी महाराज वही खान महाराज और कुछ बात गिरी महाराज हे सॉन्ग वॉज लाइक रोलिंग क्लाउड रोल मोर देन ओ पन महाराज नॉट लेस देन एनी ओ कुछ बात भारती महाराज एक वन विदिंग ओ वेन विद इन हियर ओ began to laugh. Also, I was serving till 60 years to my Guru Dev. Oh. He was loyal. Asad told me. So, if he will follow them, really our happy days. Even that we are so many in groups preaching here there. It is okay. But we should try to associate among us and preach mission in whole world. As my Shikya Guru Shri Bhakti Vedanta Swami Maharaj was preaching. Now, coming to Madhubhut Gitar Jindhi. Abhi hum log Madhubhut Gitar Jindhi hai. भक्ति के लिए विरोधी भाव रिवोल्ट स्वीकार अगेंस्ट भक्ति उसके संबंध में विचार कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है. इट इज सो एसेंशियल. यदि भक्ति विरोधी भाव टूट न हो भक्ति में एक इंच भी हम नहीं बढ़ सकते. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने महाप्रभु के कार्यक्रम में महाप्रभु की मधुर कृपा को सरस कृपा को अनुभव का उसमें डूबने के लिए ये सब बतलाया पहले सब अनर्थों को छोड़ो. जैसा प्रकार के अनर्थों का वर्णन करते हुए वे सेवापराध नमापराध वैष्णवपराध और भगवत अपराधों का वर्णन किया. भगवान के श्री चरणों में विग्रह सेवा में जो अपराध होते हैं सेवापराध उनको छोड़ना चाहिए दूर से. भगवान के नाम के प्रति जो अपराध होता है उन्हें नमा अपराध कहते हैं। वैष्णव या भागवतों के प्रति जो अपराध होते हैं उन्हें वैष्णव अपराध कहते हैं। और भगवान कृष्ण या राम और यशिम इत्यादि के प्रति जो अपराध होते हैं उन्हें भगवत अपराध। यद्यपि वो सब एक ही हैं, नमापराध में से भी आ जाते हैं, तो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हम लोगों को समझाने के लिए इन सबका वर्णन किया।
So here, for the last 10 days, we've been discussing pretty much only what that which is virodhi to bhakti, that which is against bhakti. Because if all these unhelpful elements are not removed from our bhajan, then we cannot advance one inch towards the goal of pure Krishna consciousness. Therefore, Sri Vishnu Chakravarti Thakur has first himself drowned in his nectar, hidden by Mahaprabhu, then he is distributing to us. Therefore, first, we must throw away all unwanted things, all anatta, that which has no value. Therefore, we have discussed Seva Parad, Vaishnava Parad, Nama Parad, and Bhagavata Parad. Those 33 offenses made in the service to the Vigraha have been described as Seva Parad. The 10 offenses to the Holy Name have been described here as Nama Parad. Offenses to the different incarnations, like Sri Ram, Srimad Singhadev, Sri Krishna himself, has been described as Bhagavad Aparad. And the 6 offenses to the Vaishnava have been described as Vaishnava Aparad. So still, even though all offenses are included within Nama Aparad, still Sri Krishna Chakravarti Thakur has delineated separate categories.
बतलाया गया है पाप का संबंध शरीर और मन से और अपराध का संबंध आत्मा से है। पाप भोगने पर दूर हो जाते हैं किंतु भक्ति को स्पर्श नहीं करता। पाप दूर करते फिर भक्ति हो जाए किंतु अपराध सजी नहीं दूर। वे भक्ति को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। अपराध का अर्थ ही है अपराध। राज माने संतोष प्रिय। जो भगवान की और वैष्णवों की प्रियता को संतोष को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको कहते हैं अपराध। नमापराध से भगवान नाम प्रभु का, वैष्णव अपराध से वैष्णवों का, और भगवत अपराध में भगवान का संतोष दूर हो जाता है। इसलिए खबरदार ऐसे काम मत करो। सेवा नाम वैष्णव तथा भगवान की अप्रसन्नता में भगवत भक्ति कैसे रह सकती नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो जिसे भगवान नाम भगवान वैष्णव भक्त इनके चरणों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं देखो अपराध उठो जो पहले कहा गया है उससे केवल नाम अपराध को समझो, सेवा अपराध को मत समझो। क्योंकि जितने भी भजनशील भक्त लोग हैं, साधक हैं, भगवान नाम ग्रहण करते हैं, कोई संख्या पूर्वक नाम करता है, कोई उच्च स्तर से नाम संकीर्तन करता है नियम से, अतः नाम से ऐसा नाम करने से अपराध दूर होता है। गीता भागवत के स्तोत्र टोटमियों के स्तोत्र इत्यादि पढ़ने से पाठ करने से सेवा अपराध भी दूर होता है। विशिष्ट प्रतिदिन नियम से श्रद्धापूर्वक भगवान की श्री विग्रह की सेवा यदि कोई करता है तो सेवा अपराध निवृत्त हो जाते हैं, अतः सेवा अपराधों का अंकुर ही नहीं उचित हो पाता और न सेवा अपराधों से अनर्थ की संभावना ही रहती है। अतः अपराध अनर्थ से नाम अपराध ही लक्षित होता है सेवा अपराध से।
Therefore, past sinful activity has here been related to body and mind only. But aparadha is actually directly concerned with the Atma. Therefore, the effect of past is removed very easily, but the effect of aparadha is not removed so easily. Aparadha means what? Dharma, it means santosh, santoshti, when the object of seva is satisfied with us. So the satisfaction that Hari Guru Vaishnava or the reflection to us, apa, that which destroys, or that which destroys the affection or love that the Ishtadev has towards us or that we have towards the Ishtadev is called aparad. Therefore by seva aparad, one's attraction or affection towards the Vigraha is diminished. By Vaishnava aparad, one's attraction or seva vritti towards the Vaishnavas are diminished. And by Bhagavan aparad, our attraction and Bhagavan's attraction to satisfaction with us is destroyed by Bhagavan aparad. Therefore, we should not perform any activity which will in any way diminish our attraction or affection or love for Harinam, for his devotees, or for Bhagavan himself. Therefore, seva aparad has been given in a separate category to nama-aparad. Why? Because by hearing the kirtan that is performed in a regulated way by the Mahabhagavat, very easily the effects of seva-aparad will be destroyed. By performing stotras, that means prayers that have been written by our Goswamis towards Thakurji, Hari Guru Vaishnava, by offering these prayers in a regulated way, then very easily our tendency to commit seva aparadha will be destroyed very easily.
अब पहले सेवा अपराध को समझो. First try to understand सेवा अपराध. इससे बचने की चेष्टा करो. भगवान के मंदिर में किसी सवारी पर चढ़कर जूता पहनकर मत जाओ. भगवान के उत्सव में खूब समारोह से मत मनाओ. भगवत उत्सवों को खूब विशेष वो क्या कहते हैं आडंबर के साथ में मत मनाओ, जैसे जन्माष्टमी मनाने लगे और उत्सव में ऐसे रह गए कि भगवान को भी भूल गए, भगवान का स्मरण भी लोगों को खिलाने पिलाने में लग गए और बस सरकार रूप में जो भगवान का स्मरण हो, भगवान भाव कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, ऐसे को मनाने नगर संकीर्तन किया, हजारों लोगों को कृष्ण नाम सुना दिया, उत्सव हुआ, लाखों लोग आए और हरि कथा हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है और उत्सव में भी सबको महाप्रसाद दे रहे हैं और कह रहे हैं से बोलो शरीर अविद्या जाल जड़ काल जीव थे विषय सागरे कार मध्य ज्वासी लोकमय ताकि विचार बढ़ी कृष्ण पढ़ाए परिवार प्रसाद अन्न भाई से राधा कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
मथुरा भी दूर और उसको ऐसे ही हम लोग भगवान की सवारी आके देख करके प्रणाम न करना अपराध है प्रणाम करो झूठे मुंह से भगवान का दर्शन मत करो आ रहे हो और भगवान का दर्शन कर दिया झूठे मुंह से भगवान के साथ सामने खड़े खड़े घूम करके परिक्रमा करना है ठाकुर जी सामने आना और कोई परिक्रमा करना है तो ठाकुर जी के तरफ पर गिर चुके पैर फैला करके मन बैठो ऐसे अब जैसे मैं हूं और पैर फैला दिया आप लोग अपराध हो ठाकुर जी के सामने पैर मत फैलाओ गुरु जी के सामने पैर मत फैलाओ पैर पर पैर रख करके मत बैठो ठाकुर जी के आगे सो मत जहां हरि कथा हो रही है मत सो उनके सामने खड़े हो जाओ और नहीं तो मिर्ची की बुकनी लेकर के आंख में थोड़ा सा लगा दे ठाकुर जी के सामने भोजन मत करो गुरु जी के सामने भोजन मत करो झूठ मत बोलो ठाकुर जी के सामने जोर से मत बोलो और संसारिक बातचीत मत करो यहां भी भगवान की कथा हो रही है संसारिक बात मत करो और संसारिक दुखों से दुखी होकर के उनके सामने मत रहो राधे राधे कह करके कृष्ण कृष्ण कह करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह करके रो किंतु संसारिक बात के लिए मत रहो किसी पर कृपा मत करो किसी के ऊपर में कृपा मत करो दूसरों के प्रति किसी को दंड मत दो ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी के सामने ही किसी को मारने लगे किसी के प्रति कठोर वचन मत बोलो ठाकुर जी के सामने याद रखो भाइयों और कंबल में ओढ़ करके सेवा में मत जाओ कंबल गिरेंगे पानी में जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा किसी की निंदा मत करो ठाकुर जी के सामने गुरु जी के सामने किसी की भी निंदा मत करो किसी की स्तुति मत करो ठाकुर जी के सामने हंसी की लगी मत करो और अथा भाई मत छोड़ो ठाकुर जी के सामने जरा कम खाओ हजम हो पेट में ठाकुर जी को निरस पदार्थ भोग मत लगाओ रसयुक्त मत लगाओ नए नए फल बिना भगवान को अर्पण किए मत ग्रहण करो भगवान के उत्सव के लिए लाए हुई सामग्री से उसके पहले कोई चीज ले लिया किसी को दे दिया ये मत करो अपनी स्तुति मत करो गुरु की स्तुति में मौन रहना अर्थात गुरु की स्तुति में मुखर रहो पूजनीय पुरुषों के पीठ पीछे बैठना गुरु को बच्चों को पीछे रख करके पैर मत बैठो चलते समय यहां सभा में बैठे हो सबके ऊपर में सिर पर पैर दे करके चलते ऐसा मत करो यदि जाना हो दोनों हाथों को इस प्रकार से छूट करके नम्रता के साथ में जाओ ऐसा नहीं कि चल रहे हो धड़ धड़ किसी के सिर पर पैर किसी के ऊपर में पैर किसी के लगा लाश किसी को घूसर ऐसा मत करो भगवान के सामने किसी को भी दंड मत करो केवल गुरु को गुरु के सवाल किसी को प्रणाम मत करो किसी देवता की नंदन इत्यादि ये सब चीजें हैं ये धर्म शास्त्र में इसके अपराध से भी बहुत से अपराध हैं जिसकी बचना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बात फिर तो सेवा अपराध है सिपक्सी नष्ट हो।
Therefore, we should know what are these seva aparadha and try and save ourselves from them. Firstly, we should not be carried in a palanquin or wear shoes before the Lord in the mandir. In the big festivals, like Janmashtami, we should not become absorbed in external activities to the detriment of our remembrance of Hari Guru Vaishnava. Therefore, all our activities in our festival should be aimed towards the remembrance of Hari Guru Vaishnava. To not offer pranams to the Lord in the first thing in the morning is an offense. To have darshan of the Lord just after eating with a dirty mouth, this is aparadha. To point one's feet towards Hari Guru or the Vaishnava, this is an offense. To sleep while reading Shastra, while chanting Harinam, or to sleep before the deity, this is aparadha. Therefore, if you're feeling sleepy, you can put some chili in your eyes. To eat before the spiritual master, offense. To tell lie before the deity. To speak Grammy guitar before the deity. To weep for material possessions or material gain or loss before the deity. No harm if we can weep before Nityananda Prabhu, Giradha Pandit, Radha Vinod Bihari. For their pretty weep, for their love we can weep, but to weep for material things, lamentation for that in front of the deity's offenses. To give mercy to someone or to chastise someone before the deity is offensive. To wear a blanket while being pujari, that the blanket may go in the arsenal pot, this is an offense. To blaspheme someone or to praise someone before the deity, this is an offense. To laugh and joke before the deity is an offense. To pass gas before the deity, this is offensive. To offer dry, tasteless foodstuffs to the Lord is also aparadha. To eat something, bhoga, to eat the bhoga or to offer the bhoga to someone else before the Lord is aparadha. To glorify oneself before the deity is offensive. Therefore, one should always glorify the spiritual master instead. To sit in front of senior Vaishnavas means they are in the back and we are in the front. This is offensive. When we are walking through the crowd of the Vaishnavas, to put your feet on their heads, this is offensive. If we want to walk through the crowd, we should be very humbly like this and ask the Vaishnavas to lift their feet and legs, and we should go like that, very humbly. Not that we're walking on everybody's head. Especially when everyone rushes to give pranam to Gurudev, who is there before they don't care. This is aparadha. Therefore, to offer pranam to anyone else before the spiritual master or the Lord, this is also seva aparadha. We think these are very small and important things, but these things are hindering our devotion.
श्रीमद् भागवत और गीता में कहा गया है कामे व्यंगोपक्रमे ध्वंसो मत्थर्मच्च उद्भव अनुनाति मया दवसितम सम्यक निर्गुणत् स्वातां आर्तिका। गीता में भी ऐसे ही कहा गया है इसका आरंभ करने से विनाश नहीं यहाँ भी कर्म नाश हो सकता है सौपम अपनी अवश्य प्राय तो क्या माने तब भागवत धर्म अर्थात भक्ति यदि आरंभ कर दी जाए तो मन कीर्तन स्मरण बंदर पाप से बन जाए तो यदि समाप्त न हो अर्थात सिद्धि न हो उसके पहले ही यदि जीवन पूरा हो जाए भक्ति के आरंभ कर जाने के बाद बीच में मृत्यु हो जाए, कोई बीच में बाधा आ जाए, वो भक्ति नष्ट नहीं होगी। फिर दूसरे जन्म में वो वहीं से आरंभ होगी। भरत महाराज जी घट छोड़ करके गए और वन जंगल में जाकर के भवावस्था को प्राप्त हुए। एक हिरणी पर, हिरणी के बच्चे के ऊपर में आज सबके हो गए। और फिर क्या हुआ, मरते समय हिरणी की याद करने से बस उनका तीन जन्म नष्ट हुआ। फिर जमीन का फल ठोक लिया, फिर भक्ति आरंभ। अपराध नहीं था, नहीं करना चाहिए उस बच्चे को उसने, किंतु बेटे के समान बेटा को तो छोड़ दिया और एक किरणी के बच्चे को उसने करने लगे। हुआ क्या, इतना भक्ति करने पर भी उनकी ये दशा हुई तो दूसरों की क्या होगी। तो फिर बाप का फल भोग लेगा और भक्ति की आरंभ हो जाएगी, क्योंकि भक्ति निर्गुण है। भगवान ने यह भी कहा है, दशाणु आया जब मात्रे न सिद्धि दी भवे, दशाक्षर मंत्र गोपाल मंत्र। अभी हम लोग इसको कितना करें, 24 अष्टादश, और पहले ये दशाक्षर में नहीं हो जाता है। तो इसके करने से नाम मात्र से ही सिद्धि को देता है। चक्रवर्ती छात्र यहां पर विचार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत से वचन शास्त्रों में देखे जाते हैं जिनका तात्पर्य स्पष्ट है। भागवत धर्म या भक्ति का अनुष्ठान पूरा न भी हो, जितना हो जाएगा उतना फिर आरंभ हो जाएगा दूसरे जन्म में, या तीन से समाप्त होते ही और फिर वो फल जरूर प्रदान करता है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि अपराध और पाप के अनुष्ठान से हो रहे हो, भक्ति का अनुष्ठान जितना भी हो रहा है हो चुका है, वह फल देता है, उसे बंद नहीं होता। दशाक्षर मंत्र जपने से सिद्धि प्रदान करता है, ये जो पहले कहा गया। अपराध यदि आदि के द्वारा मंत्र के फल प्रदान में कोई विघ्न होने की आशंका नहीं होती, कैसा भी आचरण मंत्र जप करने वाला करता है उससे मंत्र की सिद्धि। अब यहां पर यह बात तो ठीक है, किंतु शंका क्या है, संदेह क्या है। भक्ति अंग अथवा मंत्र के बल पर जो नमाप अपराध होता है, जो नम अपराध भी करता है और साथ साथ में मंत्र भी जपता है, भक्ति भी करता है और सोचता है मेरे भक्ति करने से जो पाप इत्यादि फल हैं, अपराध हैं, ये दूर हो जाए। करता नहीं है, पुनः पुनः करता जाता है, वैष्णव की निंदा करता है, सोचता कि हम तो नाम कर रहे हैं, हमारा इसका कोई फल होगा, समस्त ऐसा करने से वो वज्रणी हो जाता है नाम के बल पर। आप इसलिए वैष्णव की, गुरु की और दूसरे लोगों की भी निंदा मत करो, पर चर्चा मत करो। भक्ति के अंग का अनुष्ठान और पूरा छूट जाए, उसकी अंग की हानि हो जाए, मंत्र जप में किसी आचरण की अपेक्षा न रखने पर भी सिद्धि मिल जाना, यदि हम इसलिए सोचते हैं अपराध भी करेंगे, पाप भी करेंगे और नाम करेंगे, भजन करेंगे तो सब दूर है। आजकल यही देखा जा रहा है, आजकल के जीवन में यही देखा जा रहा है, कोई पाप से नहीं डरता, कोई अपराध से नहीं, वैष्णव अपराध से नहीं डरता और फल यह होता है कि उसका हृदय और कठोर रूप से होते होते और करते करते भीतर नरक में जाते, इसलिए ऐसा मत करो। तो इसका प्रायश्चित नहीं है, पाप का प्रायश्चित है, किंतु ऐसे अपराधों का कहीं भी पाप की इच्छा लेकर भागवत धर्म के आचरण का या मंत्र जप करने का उपदेश नहीं दिया गया है, उपदेश दिया गया है करने के लिए, किंतु पाप भी करो, अपराध भी करो, वैष्णव को मारो पीटो, उनका अपमान भी करो और हरिनाम भी करो, लाल कपड़ा तुलसी माला हाथ में झोली ये सब भी रहे और करो खूब सू, ऐसे लोग जहन्नम में जाते हैं, नरक में जाते हैं।
देखो Bhagavad Gita, and the Srimad Bhagavatam have described, Nahi Ango Pakarani Dwan So Magdavamas Sho Devangapi Maya Vyasitaya Samyam Nego Nathvada Vishusha O Uda. Here, in the Bhagavatam, Krishna says to Uda, O Uda, the point is, even if one starts his performance of the names of bhakti, like Shravan, Kirtanam, Vandanam, Smaranam, etc. But he cannot achieve perfection in his performance of bhajan because of an untimely death. Still, he should not have any fear, because again he will start his bhajan from his next life. And Gita also says the same thing. A small performance of this dharma will save one from the greatest fear. Therefore, the example is given in Srimad Bhagavatam. How Bharat Maharaj left everything, his kingdom, and went to the Himalayas, but became attached to a small deer. Therefore, he suffered reactions of his past sinful activities. Then, again, after some time, his bhakti began again. He left his son and made a deer into a new son. Therefore he made one mistake, and how many mistakes we are making. He did so much bhakti and still he achieved that result. But therefore no fear for him, because again he continued on from his next life. Therefore, in the time of Mahaprabhu, the Gopal mantra was 10 syllables. Therefore, Sri Vishnu Chakravarti Thakur is saying, one who chants this 10-syllable mantra, without any doubt he will achieve complete perfection, even if there is some mistake in his pronunciation. Therefore, we should have no doubt. Definitely this chanting of Gopal mantra will give the fruit. But still there comes a doubt. If someone performs the chanting of mantra and the performance of Harinam, but still, on the strength of his mantra chanting at Harinam, he commits sinful activity, will he be saved? Will he get the result of bhakti? If that person thinks, I will commit offense to the Vaishnavas or to Harinam and commit sinful activities, then he will never taste the results of mantra chanting or Harinam. Instead, that mantra chanting at Harinam will become like a thunderbolt and finish him. Therefore, in any way, we should never gossip or blaspheme Hari Guru or the Vaishnavas. The Guru Maharaj says, today I see everywhere that people are not afraid of committing any type of sinful activity or any type of apparatus. But don't worry, those persons will definitely go to hell. Even though they may have taken red cloth, tilak, chanting Hari Bol, still, nothing can save them. They will descend to the hellish planet. Therefore, sinful activity has some type of prayaschita, some type of repertory process, but there is no described repertory process for those who commit sin on the strength of the Holy Name.
Tomorrow, we will finish our parikrama of Vrindavan. Day after tomorrow, we will go to Govardhan in the way Chandra Sarovar, Aitha Chandra Sarovar, and so many places. And tomorrow we are going to Hathrol. Hathrol means this place, a village where Gopi, Jagapatni were residing there. And Krishna went there. Brahman square. जहाँ जाएंगे ना जहाँ ऊंचा स्थान को बना हुआ है वो जंगल स्थली था और कृष्ण ठहरे थे गुजराम में निकल हाँ अकुल स्थान के पास में जो गांव है महाप्रभु जी वहीं पर आकर के ठहरे और वहीं से यहाँ पर आते थे हमारे इमली तला में उसमें वन जंगल था तो उस स्थली में जाएंगे और वहां से फिर जगह स्थली में जाएंगे वहां से फिर लौट आएंगे कारण 8:44 से लेकर 9:28 तक है हम समझते हैं उस पानी के लिए कुछ दाना ले लेना उन्हीं का या कुछ 9 बजे के करीब में पानी कर लेना और हम समझते कि वहां पर पहुंच जाएंगे 9:30 जहां पर प्रसाद कुछ पाएंगे अनुपल्प हम लोग करेंगे पारण और इसके बाद में यहां पर अभी हमारी यहाँ की यात्रा समाप्त हो रही है इसलिए यात्रियों से निवेदन है कि पंडा जी के लिए विदाई जो सब जगह हम लोग देते हैं उसको अभी दे दें पंडे को हम कल विदाई दें आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज पंडा इज लीडिंग अस हियर इन वृंदावन तो और ब्रह्मचारी और अदर दे गो टू दी डिवोटी एंड दे शुड पे समथिंग ऑल्दो टुमारो और ब्रह्मचारी का उत्साह पूछ जाओ पूछ करके और सब लोगों से मांग
Tomorrow we go to, it's the last day of our Vrindavan parikram. Tomorrow we go to Govardhan. On the way, tomorrow we go to Akurgad and Atrol village. Atrol, that high hill where there is a present Matthias. At the time of Krishna there was a Yagastali and the Brahmanas were performing Yagi there. And Krishna, who used to go to this village with his cows near Akurgad, he went from there to beg Bhagavan. So tomorrow the param is from 8:44 to 9:28. Therefore we should take param like 9 o'clock so everyone can bring some if they have some small grain, small prasad, they can take
it. Have
money.
Have money.